नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। भारत का विदेशी कर्ज चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में घटकर 610.5 अरब डॉलर पर आ गया। ये जून 2022 की तुलना में 2.3 अरब डॉलर कम है। वित्त मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को ये जानकारी दी। सितंबर तिमाही के अंत तक भारत का विदेशी ऋण जीडीपी अनुपात 19.2% था। जून के अंत तक यह 19.3% था। मंत्रालय ने कहा कि सितंबर 2022 के अंत तक भारत का विदेशी ऋण 610.5 अरब डॉलर था, जो जून तिमाही की तुलना में 2.3 अरब डॉलर कम है। बयान में कहा गया कि मूल्यांकन में ये लाभ अन्य मुद्राओं मसलन यूरो, येन और रुपए की तुलना में डॉलर में मजबूती की वजह से हुआ है। यदि मूल्यांकन के प्रभाव को हटा दिया जाए तो विदेशी ऋण 2.3 अरब डॉलर घटने के बजाय 8.3 अरब डॉलर बढ़ता। सितंबर 2022 के अंत तक दीर्घावधि का ऋण मूल परिपक्वता 1 साल से अधिक 478.7 अरब डॉलर था। ये जून 2022 के अंत की तुलना में 8 अरब डॉलर कम है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि वित्तीय स्थिरता जोखिम को दूर करने और निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए क्रिप्टो संपत्ति को लेकर साझा रुख पर पहुंचना जरूरी है। आरबीआई ने बृहस्पतिवार को जारी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में कहा कि इस संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। इसमें एक विकल्प तो ये है कि एक समान जोखिम समान विनियामक परिणाम सिद्धांत को लागू किया जाए, वह पारंपरिक वित्तीय मध्यस्थों और एक्सचेंजों पर लागू समान विनियमन के अधीन हो। दूसरा विकल्प क्रिप्टो संपत्तियों को प्रतिबंधित करना है। रिपोर्ट के अनुसार तीसरा विकल्प ये है कि इसे अपने आप ध्वस्त होने दिया जाए और इसे व्यवस्थित रूप से अप्रासंगिक बना दिया जाए। इसका कारण इसमें जो अंतर्निहित अस्थिरता और जोखिम है उसे अंततः ये क्षेत्र पनप नहीं पाएगा। आरबीआई की रिपोर्ट में कहा गया कि नई प्रौद्योगिकी और व्यापार मॉडल को एक व्यवस्थागत स्तर तक बढ़ने के बाद विनियमित करना चुनौतीपूर्ण है। इसमें कहा गया कि नवोन्मेष को बढ़ावा देने तथा क्रिप्टो परिवेश में वित्तीय स्थिरता को लेकर जो जोखिम है उसे दूर करने के लिए नीति निर्माताओं के लिए उपयुक्त नीतिगत रुख तैयार करना महत्वपूर्ण है। रिपोर्ट के अनुसार इस संदर्भ में भारत की G20 अध्यक्षता में वैश्विक नियमन के लिए एक नियम तैयार करना प्राथमिकताओं में शामिल है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की रोजमर्रा के उपभोक्ता सामान खंड की इकाई रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड लोटस चॉकलेट में नियंत्रक हिस्सेदारी हासिल करेगी। रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड RCPL ने लोटस चॉकलेट के प्रवर्तकों के साथ एक समझौता किया। लोटस चॉकलेट चॉकलेट कोको उत्पाद और कोको डेरिवेटिव बनाती है। शेयर खरीद समझौते के तहत RCPL ने लोटस चॉकलेट की चुकता शेयर पूंजी पर 77% हिस्सा खरीदा है। ये खरीद कंपनी के प्रवर्तकों प्रकाश पेराजेपई और अनंत पेराजेपई से शेयर बाजार में की जाएगी। इसके बाद रिलायंस एक खुली पेशकश लाएगी। सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना लगा रही कंपनियों को राहत दी है। इसके तहत सौर और एक की जगह सौर पवन ऊर्जा यानी हाइब्रिड बिजली परियोजनाओं को चालू करने की तिथि 31 मार्च 2024 तक बढ़ाने की अनुमति दी गई है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRE ने बृहस्पतिवार को एक अधिसूचना में कहा, सौर PV परियोजनाएं लगा रही कंपनियों संघों ने मंत्रालय को प्रतिवेदन देकर सौर क्षेत्र में आपूर्ति संबंधी बाधाओं के बारे में बताया था और स्थिति से निपटने के लिए राहत देने का आग्रह किया था। अधिसूचना के अनुसार मंत्रालय में मामले पर गौर किया गया और ये निर्णय किया गया कि क्रियान्वयन एजेंसियां SECI, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NTPC, NHPC परियोजनाओं को चालू करने की तिथि 31 मार्च 2024 तक बढ़ा सकती है। इसी तरह इन परियोजनाओं से संबंधित मध्यवर्ती इकाइयों के लिए भी समय सीमा बढ़ाई जा सकती है। ये सुविधा उन परियोजनाओं को उपलब्ध नहीं होगी जिन्होंने 1 अक्टूबर 2022 से पहले बिजली खरीद समझौते PPA पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौते ECTA के तहत आभूषणों की पहली खेप बृहस्पतिवार को मुंबई, सूरत और चेन्नई से रवाना की गई। रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद GJEPC ने ये जानकारी दी। GJEPC ने बयान में कहा कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 29 दिसंबर को मुंबई में भारत ऑस्ट्रेलिया ECTA के तहत पहली खेप की रवानगी के लिए हरी झंडी दिखाई। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के साथ इस समझौते के लागू होने के साथ एक कैलेंडर वर्ष के भीतर 2 समझौते हो चुके हैं। यह हम सभी के लिए बहुत खुशी की बात है। ऑस्ट्रेलिया में तैयार उत्पादों के निर्यात की बहुत संभावनाएं हैं क्योंकि वह बड़े पैमाने पर एक कच्चा माल और मध्यवर्ती उत्पादक वाला देश है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने सैटेलाइट टेलीविजन के मल्टी सिस्टम परिचालकों के पंजीकरण का नवीनीकरण 10 साल के लिए करने की सिफारिश की है। नियामक ने बृहस्पतिवार को इसके लिए प्रक्रिया शुल्क 1,00,000 रुपए रखने का भी सुझाव दिया। ट्राई ने हितधारकों के साथ परामर्श के बाद मल्टी सिस्टम परिचालकों MSO के पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए कई दूसरी सिफारिशें भी की। नियामक ने बयान में कहा कि केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने ट्राई से सिफारिशें मांगी थीं, क्योंकि केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में MSO पंजीकरण के नवीनीकरण का प्रावधान नहीं था। ट्राई ने कहा, प्राधिकरण सिफारिश करता है कि ऐसे सभी पंजीकरण जो या तो समाप्त हो गए हैं या MSO पंजीकरण के नवीनीकरण के संबंध में MIB के फैसले का क्रियान्वयन की तारीख से अगले 8 महीनों के भीतर समाप्त होने वाले हैं, उन्हें नवीनीकरण के नियमों दिशा निर्देशों के क्रियान्वयन की तारीख से 8 महीने के बाद खत्म मानना चाहिए। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।